नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इसे 11,200 करोड़ रुपए के निवेश से तैयार किया गया है। इसका लक्ष्य नेट शून्य उत्सर्जन सुविधा के रूप में काम करना है। ये हवाई अड्डा भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में से एक है। साथ ही देश के वैश्विक विमानन केंद्र बनने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच आर्थिक और व्यापारिक स्थिरता बनाए रखना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और नागरिकों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकताएं हैं। श्री मोदी ने ये बात कल शाम कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ एक उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक में कही। बैठक का उद्देश्य संघर्ष के समय देश की तैयारियों की समीक्षा करना था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से भारत में दैनिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। नई दिल्ली में टाइम्स नाउ समिट को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में पेट्रोलियम भंडार को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों ने आपूर्ति में स्थिरता सुनिश्चित की है। श्री शाह ने कहा कि जहां कई देशों में ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखी गई है, वहीं भारत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगभग शून्य प्रभाव के साथ स्थिर आपूर्ति बनाए रखी है। श्री शाह ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का उद्देश्य फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मतदाता सूचियों में शामिल घुसपैठियों के नाम हटाना है। कल शाम नई दिल्ली में निजी मीडिया शिखर सम्मेलन में श्री शाह ने कहा कि तमिलनाडु और केरल सहित कई राज्यों में SIR प्रक्रिया को बिना किसी आपत्ति के पूरा किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल से आपत्तियां आई हैं, जबकि अन्य राज्यों में ये प्रक्रिया सुचारू रूप से सम्पन्न हुई है। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में हुई हिंसा और अशांति की घटनाओं के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने पुलिस प्रशासन पर अपनी निगरानी बढ़ा दी है। अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सभी स्तरों के अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से मिले निर्देशों के अनुसार सभी गैर जमानती गिरफ्तारी वारंटों का अनुपालन किया जाना है और भगोड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी जहाजों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित देशों के साथ लगातार संपर्क में है। नई दिल्ली में मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि LPG के 4 जहाज अब तक होर्मुज जल डमरू मध्य पार कर भारत पहुंच चुके हैं।
ईरान के बारे में 4 जहाज हमारे वहां से आ चुके हैं और हम कई सारे खाड़ी के देशों के साथ बात कर रहे हैं ताकि और भी जो हमारे जहाज है वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार करके सुरक्षित भारत आए।
कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय विठोबा भरणे से मुलाकात की। श्री चौहान ने किसानों को समर्थन देने और कृषि अवसंरचना को मजबूत करने के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता को दोहराया। तटीय क्षेत्रों में बेमौसम वर्षा से फसलों को हुए नुकसान का संज्ञान लेते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रभावित किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जाए। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज झारखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और वर्चुअल रियलिटी केस रिपोजिटरी का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह भी उपस्थित रहेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2026 का 19वां संस्करण आज से शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट 31 मई तक चलेगा। बैंकॉक में तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता के पहले चरण में भारत ने 10 पदक जीत लिए हैं। भारत ने कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक और पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक अपने नाम किए। भारत ने 2 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक जीतकर पिछले संस्करण के अपने कुल पदकों की संख्या में सुधार किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।